माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ह Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Ras Vihari Radha Ras Vihari Radhe. Jaya Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. जय जय गुरुदेव 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 जो विष्णु पाद परमहंस परिवजकाचार्य अष्टोत्तर से तिला प्रविष्ट कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिदान स्वामी शील प्रभुपाद की जो विष्णु पाद परमहंस परिवजकाचार्य अष्टोत्तर से तिला प्रविष्ट कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की नामाचार्य शील हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम शैत जगन्नाथपुर धाम की पंडरपुर धाम की गंगा मैया जमुना मैया की भक्त देवी वृंद देवी तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की हरिनाम संकीर्तन कलियुग धर्म की हरे कृष्ण महामंत्र की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन भक्त वृंद की जय श्री श्री राधाराज बिहारी ललिता विशाखा सखी की गिराज गोवर्धन की सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की निताय गौर प्रेमानंदे सभी भक्तों का जय जयकार हो सभी भक्तों का जय जयकार हो सभी भक्तों का जय जयकार हो गुरु और गौरांग का जय जयकार हो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज के प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो प्रतिदिन की भांति आज भी श्रीमद् भागवत गीता के छठवें स्कंध से अध्याय 17 और श्लोक क्रमांक 32 माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंग्रयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवत का 32 क्रमांक श्लोक। न अहम् विरंच न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्र मुनया सुरैषा विदां यस्य इहितं अशंक अशंकाः न तद् स्वरूपं पृथक् ईशा मानिनः नाहं विरंचो न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्रा मुनये सुरेशा विदाम यस्ये हितम अशंक कांशा विदाम यस्ये हित अशंक आशंका न तत्स्वरूपं पृथगीशमानिना नाहं विरंचो न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्रा मुनये सुरेशा विदाम यस्ये हितम अशंका शंका न तत्स्वरूपं पृथगीशमानिना नाहं विरंचो न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्रा मुनये सुरेशा विदाम यस्ये हिताशंक शंका न तत्स्वरूपं पृथगीशमानिना पढ़िए माताजी शब्दार्थ न नहीं अहम मैं अर्थात शिव विरंचे ब्रह्मा जी न नहीं कुमार अश्विनी कुमार नारदो देवर्षि नारद न नहीं ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा जी के पुत्र मुनया परम साधु पुरुष सुरईशा समस्त देवता विदाम जानते हैं यस्य जिसका इहितम गतिविधि अशंक अशंका अशंकों की भी अंश, अशंकों की भी अंश ना नहीं, तत् उसका स्वरूपम वास्तविक व्यक्तित्व पृथक भिन्न ईशा राजा मानिना मान बैठे है। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति दान स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, न तो मैं शिव, न ब्रह्मा या अश्विनी कुमार, नहीं नारद या ब्रह्मा के अन्य साधु पुत्र, और न देवताए देवता ही परमेश्वर की लीलाओं को तथा उनके स्वरूप को समझ सकते हैं। भगवान के अंश होते हुए भी हम अपने को स्वतंत्र तथा पृथक शासक नियंता मान बैठते हैं, जिससे हम उनके स्वरूप को नहीं समझ सकते। अनुवाद को दोहराइए। न तो मैं अर्थात शिव, न ब्रह्मा या अश्विनी कुमार, न ही नारद या ब्रह्मा के अन्य साधु पुत्र, और न देवता ही परमेश्वर की लीलाओं को तथा उनके स्वरूप को समझ सकते हैं। भगवान के अंश होते हुए भी हम अपने को स्वतंत्र तथा पृथक शासक मान बैठते हैं, जिससे हम उनके स्वरूप को नहीं समझ सकते। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता का कहना है, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम न वयौवनम च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की उपासना करता हूँ जो आदि पुरुष है, परम अच्युत अनादि अनंत रूपों में विस्तार करते हुए भी आदि पुरातन तथा नवयौवन से पूर्ण पुरुष है। ऐसे नित्य आनंदमय तथा सर्वज्ञ ईश्वर को सर्वोत्तम वेद ज्ञानी भी नहीं जान पाते तो शुद्ध भक्तों के ही समक्ष सदैव प्रकट होते हैं। शिव जी अपने को एक ऐसा अभक्त बताते हैं जो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ सकता। भगवान अनंत होने के कारण असंख्य रूप वाले है, तो भला सामान्य पुरुष उन्हें कैसे समझ सकता है। शिव जी निसंदेह सामान्य पुरुषों से ऊपर है, किंतु वे भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते। शिव न तो सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं, न ही भगवान विष्णु की श्रेणी में। वे सामान्य पुरुषों तथा भगवान विष्णु दोनों के मध्य है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ असीम प्रभु जिन्होंने मुझे श्रीमद् भागवत की कक्षा देने के लिए आदेश दिया, परंतु सभी वचनों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब यहाँ शिव जी स्वयं कह रहे हैं कि भगवान को हम समझ नहीं सकते, तो यहाँ तो भगवान के ऊपर बोलने की बात आ रही है। तो आप सोच लीजिए, मेरे जैसा व्यक्ति अभी आप बैठा है, तो आप समझ जाइए, और जो भी हम यहाँ पर लिखा है या शास्त्रों से सुना है या आचार्यों से अन्य कथाओं से सुना है, बोलने का प्रयास करूंगा। तो यह अध्याय श्रीमद् भागवतम 17वां अध्याय है, जिसमें माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप। तो इस कथा का वृत्तांत इस प्रकार है, जब साधुओं की सभा में जहाँ नारद मुनि सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे, उस सभा में स्वयं शिवजी भी अपनी पत्नी के साथ आलिंगन कर रहे थे। तो भौतिक दृष्टि से ये अशोभनीय लगता है। तो चित्रकेतु आकाश से जब उसे भगवान का दर्शन हुआ और भगवान के द्वारा दिव्य विमान प्राप्त हुआ, तो थोड़ा उत्साहित आनंद, जिस भगवान की कृपा हो जाए तो कितना प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो उस आनंद के विभोर में अपने पत्नियों के साथ रममान करते हुए आकाश से विचरण कर रहा था, तो उसकी दृष्टि इस दृश्य पर पड़ी। और इस दृश्य पर जब उसकी दृष्टि पड़ती है, तो वो जोर जोर से ठाके मारकर हंसने लगता है। अने पार्वती को जब उसकी हंसी अच्छी नहीं लगी, उसे लगा ये हमारा परिहास, यानी शिवजी का परिहास कर रहा है। हाँ, क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति देख सकता है कि यदि साधु पुरुष शिवजी जैसे महान व्यक्ति देवादिदेव महादेव भरी सभा में, वो भी वहां पर ब्रह्मचारी भी बैठे होंगे, सन्यासी भी है, साधु भी है, परमहंस लोग हैं, उनके सभाओं में अपनी पत्नी को, क्योंकि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि पत्नी का साथ सहवास ये छुपे रूप से या अंतरंग रूप से उनका संग किया जाता है, पब्लिक के सामने सभा में नहीं किया जाता है, जो भी उनका संभोग या आलिंगन हो, चुंबन हो, जो भी हो। परंतु इस दृश्य से चित्रकेतु भ्रमित हो जाता है और हंसने लगता है, परंतु शिवजी स्वयं आगे के तात्पर्यों में पार्वती को प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, चित्रकेतु भगवान के इस कथन से स्पष्ट है भगवान को उनके भक्त सदैव अत्यंत प्रिय है। वास्तव में शिव ने पार्वती से यह कहा, चित्रकेतु तथा मैं दोनों ही भगवान के परम भक्त है, परम प्रिय है, अर्थात हम दास रूप में समान स्तर पर है, हम एक दूसरे के सखा है और कभी भी परिहास भी कर लेते हैं। जब चित्रकेतु मेरे व्यवहार पर जोर से हंसा, तो वास्तव में मित्र होने के नाते उसने ऐसा किया, अतः उसे शाप देने की कोई आवश्यकता न थी। इस प्रकार शिवजी ने अपनी पत्नी पार्वती को विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि चित्रकेतु को शाप देकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो शिवजी शाप दे सकते थे, लेकिन शिवजी को पता है कि ये शुद्ध भक्त है, क्योंकि जिसे साक्षात भगवान के दर्शन हो चुके हो, व्यक्ति किस प्रकार उसमें अवगुण हो सकते हैं, क्योंकि भगवान जैसे स्पारिश के स्पर्श में लोहा जब आता है तो वो भी सोना बन जाता है, तो उसमें लोहे के गुण अंश मात्र में भी नहीं रहते। तो जब कोई जीवात्मा भगवान के संपर्क में आ जाता है, तो उसके अंदर तो दिव्य गुण प्रकट हो ही जाते हैं, तो वो किस आधार पर दूसरे का अपराध कर सकता है। तो एक वैष्णव कभी भी दूसरे का अपराध नहीं कर सकता है। तो यहां पर चित्रकेतु राजा ने शिवजी स्वयं रहे, क्योंकि शिवजी समझ गए कि मित्रता के आधार पर, क्योंकि भक्ति के स्तर पर शिवजी क्या समझ रहे, हम समान स्तर पर है, तो उसी के कारण उन्होंने मेरा परिहास किया। तो मित्र मित्र में परिहास होता है, एक दूसरे की मजाक की जाती है, तो उसे अपमान या अपराध नहीं समझा जाता यदि वास्तव में मित्र है। तो शिवजी ने समझा, लेकिन पार्वती को यह अपराध लगा, तो उन्होंने शाप दिया। तो शिवजी पार्वती को उपदेश दे रहे हैं। ये शिव उवाच है, मतलब शिव जी ये 17 से श्लोक से लेकर 27 से लेकर अभी तक शिव जी बोल रहे रुद्र उवाच। सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय में शिव जी के वचन ही दोहरा रहे, शिव जी ने जो बोला एज इट इज लिखा गया है। तो शिव जी पार्वती को समझाते हैं, हे सुंदरी तुमने वैष्णव की महानता देख ली, श्री भगवान हरि के दासानुदास होकर महान पुरुष होते हैं और किसी प्रकार के सांसारिक सुख में रुचि नहीं रखते। तो शिव जी इस श्लोक में समझा रहे हैं कि भगवान और भगवान के भक्तों को समझना बड़ा कठिन है। शिव जी तो यह स्वयं घोषित कर रहे हैं कि मैं स्वयं ना जीव हूं ना ईश्वर हूं, शिव तत्व होकर मैं पूर्ण तरीके से भगवान को नहीं समझ सकता। और उन्होंने नाम भी गिनाए 12 महाजनों के यहां पर, नारद, अश्विनी कुमार, ब्रह्मा, शिव, साधु पुत्र। तो 12 महाजन, शास्त्र कहते हैं कि 12 महाजन पूरी तरीके से जानते हैं, लेकिन 12 महाजनों से स्वयंभू शंभु नारदा, स्वयं शिव जी भी जो आद्य महाजनों में प्रथम है वो स्वयं भी नहीं जान रहे। तो इसलिए भक्तों के क्रियाविधों को समझना बड़ा और भगवान की क्रियाविधों को भी समझना बड़ा कठिन है। इसलिए वैष्णव आचार्य गण कहते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझा है। तो हम देखेंगे भागवतम में कई सारी प्रार्थनाएं, मैं सुना है कि 32 भक्तों की प्रार्थना है शायद भागवतम में, रुद्र गीत, कुंती महारानी प्रार्थना, चित्रकेतु की, अंतर आपके भीष्म पितामह, ऐसे अनेक प्रार्थनाएं। इन प्रार्थनाओं में जिन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया है वो लोग भी भगवान को समझने में अचंभित हो जाते हैं, जिस प्रकार कुंती महारानी। तो हम एक एक लोग, एक एक भक्तों को या तो कई सारे आचार्यों का वर्णन किया है महाजनों का, कि भगवान को समझना हमारे बस की या हमारे इंद्रियों शुद्ध हो जाने के बाद भी नहीं समझ सकते। तो कुंती महारानी कहती है भागवतम के 8वें स्कंद में, प्रथम स्कंद में कुंती महारानी की प्रार्थनाएं दी गई है। न वेद कच्चित भगवत चिकीर्षितम तवेह मानस्य नुडाम विडंबनम न यस्य कच्चित इतयोस्ति कर्हिचित द्वेषच्च अस्मिन् विषयामतिर्मणाम। कुंती महारानी करती है, हे भगवान आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और अत्यंत भ्रामक है। न तो आपको कोई कृपा पात्र है, न ही कोई आपका द्वेष भाजन है। लोगों की यह कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। तो कुंती महारानी कहती है भगवान की लीलाओं को कोई भी नहीं समझ सकता है। ये कुंती महारानी क्यों कह रही है, जो भगवान बाल रूप में थे तो जिससे स्वयं भय भयभीत रहता है वही कृष्ण बाल्यावस्था में जब माता यशोदा के आंगन में खेलते हैं और माता के द्वारा जब छड़ी उठाई जाती है तो रोने लग जाते हैं। थोड़े जो साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, उनसे सारा भय, भय भी भयभीत होता है, वो भी डरता है। लेकिन यहां पर इन लीलाओं में भगवान दर्शाते कि मैं स्वयं भी डरता हूं माता यशोदा के केवल छड़ी मात्र हाथ धारण करने से। तो इसीलिए कुंती कह रही है कि आपकी लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, सब भ्रमित हो जाते हैं। दूसरे श्लोक में कहती है क्योंकि भगवान के क्यों नहीं समझ सकते हैं, जब बद्ध जीवात्मा इस संसार में आता है तो माया जवनिका आच्छन्यम अडोक्षज अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दुषा नटो नाट्य धरवेशा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के दो पर्दे से ढके रहने वाले अशाश्वत तत्व है, शाश्वत तत्व है। आप मूर्ख दर्शक के लिए उसी प्रकार अलक्ष्य है रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता का वस्त्र पहन लेने पर कलाकार पहचान में नहीं आता है। तो भगवान जब आते तो एक नट की तरह अपनी लीला करते है ना, नटो नाट्य यशोधरा, कुंती महारानी कहती है। तो उनकी लीलाओं को समझ पाना बड़ा कठिन है और भगवान को समझ पाना। 10वें अध्याय में अर्जुन जब भगवान का वर्णन करता है परम पवित्र, उसके आगे के श्लोक में कहता है सर्वमेतम दुतम मन्ये यन्माम वदसी केशवा नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुदैवन दानवा। वो कह रहे कि बड़े बड़े देवता, दानव, असुर सब लोग आपको नहीं समझ सकते। तो भगवान को समझने का तरीका क्या है, भगवान को कैसे समझ जाए? तो राजा जड़ भरत रघुगण को उपदेश देते हुए समझाते किस तरह हम भगवान को समझ सकते हैं। तो पांचवे अध्याय पांचवे स्कंद के बारहवे अध्याय के बारह तेरह श्लोकों में राजा जड़ भरत रघुगण को उपदेश देते हुए समझा रहे हैं। हम उन्हीं के श्लोकों को दोहराते हैं। हे राजा रघुगण, महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को स्नान किए बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य धारण करने, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों का अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में ग्रह त्याग अथवा शीत ऋतु में जल में घुसे रहने या ग्रीष्म में अग्नि में अथवा सूर्य की झुलसाती धूप में पड़े रहने जैसी कठिन तपस्याओं से परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने के और भी अनेक साधन है, किंतु परम सत्य उससे ही प्राप्त होता है जिसे महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त होता है। आगे के श्लोक में कहते हैं, तो वे शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्तों की सभा में राजनीति या समाजशास्त्र जैसे सांसारिक विषयों पर चर्चा चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वहां तो श्री भगवान की लीलाओं या गुणों की चर्चा होती है, उनकी प्रशंसा तथा उपासना अत्यंत मनोयोग से की जाती है। यहां तक कि विशुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा पुरुष जो परम सत्य में तदाकार होना चाहता है वो भी अपने इस विचारधारा को त्याग कर वासुदेव की सेवा में आसक्त होता है। तो यहां कर कह रहे हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों को यानी भगवान को समझने के लिए हमें उनके शुद्ध भक्तों की चरण रज। तो यहां पर जो भी आचार्य गण है, जैसे नारद जी का उदाहरण दिया है कि नारद भी नहीं समझे, लेकिन नारद जी भगवान को कैसे समझ पाए, दर्शन कर रहे, जब पूर्व जन्म में नारद के बारे में होता है, पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे, महत सेवादार आहुर मुक्त थी। महान भक्तों की सेवा करने से हम भगवान को समझ सकते हैं। तो जब नारद मुनि दासी पुत्र थे पूर्व जन्म में, तो उनके घर चातुर्मास के समय साधु मुनि या भक्तगण जो बड़े साधु होते विचरण नहीं करते, एक जगह पर स्थायी करते चातुर्मास, क्योंकि बारिश का समय होता है, वातावरण ठीक नहीं होता है, तो इसी के कारण एक जगह बैठकर अपना भजन करते। तो उन्होंने इस जंगल में एक कुटिया देखी इस दासी की, तो वहां पर वो रुक गए और वहां पर उन्होंने अपना चातुर्मास बिताया। तो उस चातुर्मास के समय नारद मुनि उनकी सेवा करते थे, छोटे बालक थे। तो उनके मन में आया कि वो इतने, क्योंकि साधु के संग में लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, तो नारद मुनि ने उनका संग किया और उन्हें इच्छा की कि मैं आपका उच्छिष्ट खा सकता हूं का। तो जब उन्होंने आज्ञा दी कि हाँ बालक इतना तीव्रता या उत्सुकता से पूछ रहा है, तो उन्होंने आदेश दिया, तो उनके झूठे ग्रहण से उनमें भगवत चेतना जगी, भगवान की भक्ति करने की चेतना जगी। तब वो जब भगवत चेतना जगी तो उनके भक्ति मार्ग में या भगवान को जानने के प्रयास में बाधा थी उनकी माँ। तो भगवान ने कुछ योजना बनाकर सर्प के दंश के द्वारा उनकी जो आसक्ति माँ के प्रति थी वो भी काट डाली। और जब नारद मुनि पूर्वजन्म में जो थे अकेले रह गए, लेकिन अंदर से उन्हें भगवत चेतना प्राप्त हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें साधु संग सर्वशास्त्र के। तो नारद मुनि निकल पड़े भगवान के खोज में उत्तर दिशा की ओर। तो ये छोटे से बालक में प्रेरणा भगवान को समझने की आई कहां से? तो यही कहने का तात्पर्य है कि राजा रघुगण को जब जड़ भरत कह रहे कि साधुओं की संगति से क्या और साधुओं के चरणों की धूल, तो चैतन्य चरितमृत लिखा है ना कि तीन तत्व है जो हम भगवान की भक्ति या भगवान को समझ सकते हैं। हाँ, शुद्ध भक्त जल, चरणों का रज, चरणों का जल, चरणों की रज और उनका शुद्ध भुक्त भुक्त अवशेष मतलब महाप्रसाद। तो ये तीन तत्व है जिसके द्वारा हम भगवान को भक्ति कर सकते हैं, भगवान को समझने का प्रयास कर सकते हैं। शिव जी तो कह रहे कि मैं स्वयं नहीं समझ सकता, तो अन्य लोगों की बात छोड़ दीजिए। तो भगवान को समझने यदि भगवान स्वयं कृपा कर दे तभी हम भगवान को समझ सकते हैं, नहीं तो भगवान को समझ पाना बहुत कठिन। इसलिए क्योंकि भगवान अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान ऐसी लीला करते हैं, ऐसे रूपों को धारण करते हैं कि लोग अचरज में पड़ जाते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि भगवान ऐसा रूप क्यों धारण किया। हाँ, भगवान यदि पूर्ण पुरुषोत्तम है तो उनको इतना तुच्छ रूप धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी, जैसे वरा रूप धारण किया। लेकिन भगवान आद्य पुरुष है, अनादि रूप धारण कर सकते, अनंत रूप धारण कर सकते, जिसी परिस्थिति होती है वैसे रूप धारण करते हैं। लेकिन जब रूप धारण करते तो सामान्य विद्वान या बोलते कि विद्वान लोग मायावादी लोग भ्रमित हो जाते हैं, इसीलिए भगवान के अस्तित्व को या भगवान के रूपों को नकारते हैं और क्या क्या घोषित करते कि भगवान निराकार है। कि बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने वेदों को पूरी तरह से रट लिया है, जान लिया है, तभी वो निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि भगवान जिनका कोई रूप नहीं है निराकार है। इसीलिए कहते हैं कि बड़े विद्वान बड़े बड़े पंडित भी भगवान को नहीं समझ सकते, केवल भगवान को समझा जाता है भक्ति के द्वारा। भक्त्यामाम अभिजानाति यावान चक्षास्मि तत्वता। श्रीमद भगवत गीता में 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मुझे किस तरह जाना जा सकता है, या शिवजी बोले हम नहीं जान सकते लेकिन भगवान बता रहे अपने जानने का तरह। भक्त्यामाम अभिजानाति यावान चक्षास्मि तत्वता, केवल भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। और भक्ति एकमात्र ऐसा मार्ग है जिससे भगवान को जाना जा सकता है, क्योंकि भक्ति हम स्वयं के प्रयास से नहीं करते। जैसे विद्वान लोग ज्ञान अपने बुद्धिमत्ता से हर्जित करते हैं, लेकिन भक्ति अपने स्वयं के प्रयासों से नहीं होती है। चैतन्य चरितमृत वर्णन है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो यहां पर भगवान मानने के भगवान की भक्ति किस तरह प्राप्त हो सकती है, एक तो साक्षात कृष्ण कृपा करे, नहीं तो गुरु। ये दो ही व्यक्ति है जो हमें भगवत भक्ति प्रदान, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। तो भगवान के समझ ले, भगवान गीता में कह रहे हैं कि मुझे भक्ति से जाना जा सकता है और भक्ति भी उनकी कृपा से प्राप्त होती है। तो भक्ति प्राप्त होती है मतलब भगवान कृपा तो भक्ति, तो हम जब भक्ति करने निकले उन्हीं की कृपा से हम भक्ति मार्ग पर चल पड़े। तो भक्ति करते हुए जो चित्रकेतु का प्रसंग आ रहा है कि चित्रकेतु को भगवान का तो दर्शन हो चुका था, दिव्य विमान भी प्राप्त हो चुका था, परंतु उन्हें फिर ऐसा शाप क्यों मिला। लेकिन चित्रकेतु की परिभाषा में चित्रकेतु स्वयं यहां पर बोल रहे हैं, मैंने एक शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में, भक्ति कितनी श्रेष्ठ है कि वो किसी भी संकट किसी भी प्रकार का अवरोध जीवन में आए डगमगाता नहीं है। ये चित्रकेतु के उदाहरण से यह हमें स्पष्ट होता है। तो चित्रकेतु पार्वती जी को कह रहे हैं, हाँ चित्रकेतु ने कहा है ना, यहां पर एक शुद्ध भक्त की क्या लक्षण होते हैं। हाँ शिवजी ने वो श्लोक कहा है, बहुत सुंदर श्लोक है, हाँ नारायणा परा सर्वे न कुतच्चन बिब्बति स्वर्गाप नरकेशु तुल्यार्थ दर्शिना। कि भगवान शिवजी कह रहे हैं कि भक्तों की डेफिनेशन क्या है, पूरी तरह से भगवान नारायण की सेवा में लीन रहने वाले भक्तजन जीवन की किसी भी अवस्था से भयभीत नहीं होते हैं। उनके लिए ना स्वर्ग मुक्ति तथा नरक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं। उनका एकमात्र शुद्ध भक्तों का लक्षण क्या है, जो हमेशा केवल एक ही इच्छा करते हैं कि मैं आपकी सेवा में लगा रहूं। इसलिए चित्रकेतु को जब शाप मिला तो चित्रकेतु विचलित नहीं हुए, अरे मैं तो शुद्ध भगवान का शुद्ध भक्त हूं तो मुझे क्यों शाप दिया गया। तो चित्रकेतु ने कहा, शिवजी समस्त जगत के गुरु और भौतिक देहधारी जीवात्मा में सर्वश्रेष्ठ है, वे ही धर्म पद्धति के व्याख्याता है, तो भी वे कितना आश्चर्यजनक कि बड़े बड़े संत पुरुषों की सभा के बीच अपनी पत्नी पार्वती को आलयन कर रहे हैं। जटाधारी शिवजी ने निसंदेह कठिन तपस्या की है, वैदिक नियमों के कट्टर अनुयायियों की सभा में अध्यक्ष है, किंतु तो भी वे साधु पुरुषों के मध्य अपनी गोद में अपनी पत्नी को लेकर विराजमान है। चित्रकेतु यहां पर चित्रकेतु, हे माता मैं अपने हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूं, मुझे शाप की परवाह नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार ही देवता द्वारा सुख या दुख प्रदान किए जाते हैं। तो यह कह रहे हैं कि आपके शाप की मुझे परवाह नहीं, क्योंकि शुद्ध भक्त जान जाता है कि जीवन में जो भी सुख दुख तकलीफ हानि लाभ जय पराजय जो भी कुछ होता है अपने पूर्व कर्मों के कारण है, तो वो उससे भयभीत नहीं होता कि मेरे जीवन में इतना कष्ट मुझे क्यों हो रहा है, मैं तो भक्ति करने आया, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया त्याग दिया, मैं तो अभी हरिनाम ले रहा हूं, तो मेरे जीवन में इतने संकट क्यों आ रहे। भक्त के मन में प्रश्न हो जाता है, हाँ भगवान की पूरी शरण में आ जाना कि तुम्हें सुरक्षित होना जाना चाहिए। भगवान ने कहा ना, देवी ऐसी गुरुमय मेरे भक्त मेरे देवी प्रकृति के अधीन रहते हैं, तो मुझे कष्ट नहीं होने चाहिए। साधारणता नए भक्तों का यही सब्रम मन में बन होता है, कि हम भक्त बन गए, हमें अभी तो कोई चिंता नहीं है, भगवान के शरण में आ गए, अभी तो मस्त खाओ पियो ऐश करो, है ना, तो कोई कष्ट नहीं। परंतु ये भक्ति मार्ग ऐसा है कि जब भगवान तो पहले आकर्षण देते हैं, है ना, हम प्रवचन में कहते खाओ इस्कॉन क्या है, खाओ गाओ और नाचो, तो फिर वो सुन लेते, जब आते हैं तो भगवान ये नहीं है कि हमें केवल, ऐसा नहीं कि भगवान कष्ट देते हमें परेशान करते, नहीं, बल्कि हमें जो भौतिक दूषण लगे, हाँ, काम क्रोध लोभ मर्ष ईर्षा द्वेष, हाँ, मत्सर, हाँ, आती त्रिविध ताप, इन सारों से शुद्ध करने के लिए हमें इन सारे तकलीफों को दिया जाता है कि हमारी परीक्षा है, हम वास्तव में भगवान की सेवा को दृढ़ता से, स्वेच्छा से और लगन से करना चाहते हैं क्या, क्योंकि बिना परीक्षा के हम नहीं समझ पाते कि हम, जैसे कोई विद्यार्थी दसवीं कक्षा में पढ़ रहा है तो उसने जो भी कक्षा में पढ़ा उसे समझा क्या नहीं समझा, एक कब डिसाइड होता है, कब डिसाइड होता है, एग्जाम के बाद। तो एग्जाम आना बुरी चीज है क्या गलत चीज है, गलत चीज है, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। तो वही भक्ति में भी लागू होता है, जैसे चित्रकेतु के जीवन में हुआ कि, लेकिन हम समझ जाते हैं जब हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, कोई हमको तकलीफ दे रहा है, तो हम दूसरे को दोषी मानते हैं। तो राधानाथ महाराज का एक स्टेटमेंट है, मैं इंग्लिश में नहीं कह पाऊँ, हिंदी में, कि यदि हम कोई तकलीफ दे रहा है और हम यदि उसके प्रति मन में द्वेष की भावना या बदले की भावना रखते हैं तो पुनः हम अपने कर्मों का जाल बिछाते हैं। क्योंकि वो समझ लेना चाहिए, जो भक्त है वास्तव में समझ जाता है कि वो मेरे जीवन में कष्ट आए मेरे पूर्व कर्मों के कारण, इसलिए ना सामने वाला द्वेषी है, दोषी है, ना भगवान दोषी है। ये तो सामान्यतः क्या लोग, अरे मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा था, मेरे जीवन में भगवान इतना कष्ट क्यों दिया, मुझे इस कष्ट में क्यों डाला, अरे मैं तो इनके बारे में अच्छा सोच रहा हूं तभी भी मेरे को तकलीफ दे रहे हैं। नहीं, जीवन में, भक्ति जीवन में या सांसारिक जीवन, किसी भी जीवन में जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसके कारण ना कोई सामने वाला व्यक्ति है, ना ही भगवान है, ना कोई दूसरा जीवात्मा है। इस संसार में हम इच्छा से आए थे, इच्छा द्वेष समुत्वेन दंदमोहेन भारता, भगवान गीता में कहते हैं अपनी इच्छा की थी और भगवान से द्वेष किया था, इसलिए भौतिक जगत में डाला गया है। तो यहां कर कर्म की गंथी कौन गुत्थे गए, हम ही गए। जैसे बोलते हैं उदाहरण देते प्रभुपाद, मकड़े का जाला, मकड़े का जाला कोई दूसरा गुनता है, नहीं, मकड़ा स्वयं गुनता है, लेकिन क्या होता है, उस जाले में खुद फंस जाता है और खुद मर जाता है। तो उसकी मृत्यु का कारण कौन बना, वो स्वयं बना। इसलिए भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन में, हमारे जीवन में जो भी कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है, अच्छा और बुरा, उससे का कारण हम स्वयं है। तो चित्रकेतु ये समझ गए थे, चित्रकेतु शुद्ध, क्योंकि शुद्ध भक्त समझ जाता है कि जीवन में जो भी मेरे साथ होगा उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूं और उसे सह लेता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा है भागवतम के दशम स्कंद में, तत्तेनुकंपा सुमुक्षमामो भुंजाने एवात्म कृतम विपाकम, जो अपने ऊपर आए हुए आघातों को, कष्टों को सहन कर लेता है और सहकर भगवान की भक्ति में लगा रहता है, वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, मुक्ति उसकी दासी बन जाती है, उसको देना ही पड़ता है जो सहन कर लेता है। तो यहां पर चित्र गए तो समझ गए थे कि ये जो शाप मिला है ना, इसके लिए पार्वती कारण है, ना मैं का, ना कोई अन्य कारण है। तो यह बोल रहे हैं, इस संसार में न तो स्वयं जीवात्मा और न पराये ही भौतिक सुख दुख के कारण है, केवल अज्ञानता व जीवात्मा यह सोचता है कि वह तो पराये तथा लोग इसके कारण स्वरूप है। किसके वह सोचता है, मतलब जो व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे जीवन का कारण ये सामने वाला है, ये प्रभु जी ने मेरे जीवन साथ ऐसा किया, इसके वजह से मुझे ऐसा हुआ, तो मतलब वो क्या है, अभी तो भक्ति में परिपक्व अज्ञानी है। आने के बाद भी यदि वो यही समझ रहा है कि सामने वाले प्रभु जी ने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मेरा ऐसा हुआ, तो मतलब अब तक वो परिपक्व नहीं है, अभी परिपक्व होने के लिए बहुत समय लगेगा, मतलब बहुत कसौटियां देनी पड़ेगी, इसका अर्थ ये। आगे कहते हैं, यह संसार सतत प्रवाहमान नदी के तरंगों के समान है, अतः इसमें क्या शाप और क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग और क्या नरक लोक, क्या सुख और क्या वास्तविक दुख, निरंतर प्रवाहित होते रहने के कारण तरंगे कोई शाश्वत प्रभाव नहीं छोड़ती। तो सुख दुख नदी के तरंगों की तरह है, अभी लहर है, आती जाती रहती है, तो समुद्र विचलित नहीं होता है। इसलिए गीता में इसका दूसरे अध्याय में लास्ट भगवान ने यह श्लोक कहा, आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रवशंति यद्वत् यद्वात् कामान प्रवशंति सर्वे न शांति माप्नोति न काम कामी। तो समुद्र, उदाहरण समुद्र का देते, यहां भी चित्र के तो यही बोल रहे हैं कि तरंगों की तरह है। तो शुद्ध भक्त जानता है लाभ आएगा, हानि होगी, सुख आएगा, दुख आएगा, परेशानी होगी, तो इसलिए तो आवागमन की तरह जाता रहेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं भगवत गीता के, यदि हम भक्ति करना चाहते हैं या इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो भगवान बोलते सर्वप्रथम उस व्यक्ति को एक गुण धारण करना होता है। यदि इस गुण को कोई व्यक्ति धारण कर लेता है तो उस आध्यात्मिक पथ पर तीव्रता से आगे बढ़ेगा। और वही श्लोक देवहूति माता को कपिल मुनि भी कहते हैं, वही क्वालिटी। भगवान कहते मात्रा स्पर्शास्तु कौनते हैं, यह शीतोष्ण सुख दुखता आगमा पाइन्यो नित्या ताम तितिक्ष भारता। यहां भी भगवान दोनों वर्णन कर दिए जो यहां पर चित्र के द्वारा कि सुख दुख सर्दी गर्मी, इसमें जो तितिक्षवा, तितिक्षवा ने सहनशील, इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी कहते तृणादु पी सुनी चेना, कृष्ण भी कह रहे तितिक्षवा, कपिल मुनि भी कह रहे तितिक्षवा कारुणे का सहदम सर्वदेही नाम। तो इस पथ पर चलते हुए हमें यदि भक्ति प्राप्त करनी है, भगवान को जानना है, तो सहना होता है, सहनशील बनना होता है, हर प्रकार के संकटों को सामना करना पड़ता है। और इस स्थिति में यदि विचलित हो जाते तो बहुत दूर है लंबा रास्ता, बहुत लंबा है, फिर बहुत जन्म लग जाएंगे। देखिए यहां पर कितना सटीक उदाहरण है कि चित्रकेतु को तो भगवान प्राप्त हो चुके थे, दर्शन हो चुका है ना। तो जब बोलो ना, जब भगवान के संपर्क में आ गए तो भगवान के दिव्य गुण आ जाते हैं। भगवान का गुण, भगवान कितना सहर है, सारी धरती उनकी है, सब हम लोग उनके खा रहे सारे संसारी, लेकिन कितना एहसान फरामोश है। तो भगवान को कितना लग रहा होगा, भगवान दुखी होंगे कि नहीं, कि इतने जीवात्मा जिन्होंने के लिए मैंने इतना सारा संसार दे दिया तब भी एक क्षण के लिए मुझे याद नहीं करते, और बल्कि कुछ गलत हो जाए तो मेरे को दोष देते हैं। तो भगवान अपने से दिखाते हैं, क्योंकि भगवान में जो गुण है वो उनके भक्तों में आते हैं। तो चित्रकेतु के अंदर जब भगवान के दर्शन कर लिए तो वो दिव्य गुण आना स्वाभाविक था, तितिक्षवा। तो चित्रकेतु ने माता पार्वती को वही वचन बोल रहे जो भगवान ने गीता में बोले, मतलब भगवान और भक्तों में अंतर नहीं होता है, बस अंतर इतना ही होता है कि भगवान विभु होते हैं और जीवात्मा भक्त अणु होते हैं, लेकिन क्वालिटी उनमें समान होती है, सेम होती है, ये होते भगवत भक्त। आगे कहते हैं श्री भगवान एक है, वे भौतिक जगत की स्थितियों से प्रभावित हुए बिना आत्मस्वरूप शक्ति से समस्त जीवों की सृष्टि करते हैं। माया से दूषित होकर जीवात्मा अविद्या को प्राप्त होता है और अनेक प्रकार के बंधनों में जा पड़ता है। कभी कभी ज्ञान के कारण जीवात्मा को मुक्ति दी जाती है, सत्व तथा रजोगुण के कारण उसे सुख तथा दुख मिलते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त जीवों को एक समान देखते हैं, अतः न तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है, न कोई शत्रु, न तो उनका कोई मित्र है, न कोई परिजन। इस भौतिक जगत में अनासक्त होने के कारण उन्हें तथाकथित सुख के लिए न तो कोई स्नेह है, न दुख के लिए किसी प्रकार की घृणा। सुख तथा दुख सापेक्ष है, भगवान सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं, अतः उनके लिए दुख का कोई अर्थ नहीं है। हे माता, आप वृथायु क्रुद्ध है, क्योंकि मेरे समस्त सुख दुख मेरे पूर्व कर्मों के द्वारा सुनिश्चित है, अतः मैंने तो क्षमा प्रार्थी हूं और ना आपके शाप से मुक्त होना चाहता हूं। यद्यपि मैंने जो कुछ कहा है वो अनुचित नहीं है, किंतु जो कुछ आप अनुचित समझती हो उसके लिए क्षमा करें, है ना। तो चित्रकेतु स्वयं समझ गए थे कि ये शाप पार्वती के द्वारा नहीं दिया गया है, इसके पीछे भगवान की कुछ योजना। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के जो जो भी हमारे जीवन में करते हैं, भक्ति जीवन में, वो भगवान करते हैं। क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, वो मेरे देवी प्रक्रिया में रहते हैं, और भगवान के द्वारा भक्तों के जीवन में सुख दुख कष्ट सब डाले जाते हैं। तो उसके लिए हमें भगवान को ना दोषी देना चाहिए ना सामने वाले को, नहीं तो फिर हम दूसरे को दोष देते रहेंगे, दोषी ठहराते रहेंगे, तो हम अपने कर्म बंधन के जाले और विस्तारित करते रहेंगे। तो इससे बेटर है कि चित्रकेतु के इस घटना से, चित्रकेतु के इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे सुख आए, दुख आए, संकट आए, कोई हमारा कष्ट दे, बस हमें अपने कर्मों का कारण मानकर सहते हुए गुरु शास्त्र और अथॉरिटी की आज्ञा के अनुसार कार्य करते रहे। क्योंकि इनके आज्ञा से कार्य करेंगे तभी हम इन सारे संकटों को झेल पाने की शक्ति पाते, नहीं तो संभव नहीं है। तो चित्रकेतु के यहाँ पर शिवजी भक्त और भगवान दोनों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, उनके इस पार्वती को जो वचन सुना रहे, इन वचनों में भक्त की महिमा। इसलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेना बुझाए, इसलिए बाह्य रूप से वैष्णव की क्रिया मुद्रा को हम यदि अंदाजा लगाते हैं, भगवान की क्रियाकलापों को हम अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं तो नहीं समझ सकते। इसलिए विज्ञेना बुझाए, हमारी ज्ञान से हमारी बुद्धि से हम वैष्णव की भी और भगवान की क्रियाओं को समझ पाना संभव नहीं है। इसलिए बस अपने क्रिया अपनी जो सेवाएं, भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण मुझे आपकी सेवा में सदैव लगा के रखो, क्योंकि आपको समझना तो बहुत दूर है, आपकी सेवा करते 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 मैं शुद्ध हो जाऊं तो समझ पाऊं। हाँ, हरे कृष्णा। तो चित्रकेतु के इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम यदि भगवान को समझना चाहते हैं तो भगवान की द्वारा या अपने कुर्म कर्मों के द्वारा जो भी कष्ट दुख हमें मिले उसे सहन करते हुए भगवान का वरदान समझ के हुए अपनी सेवाओं में निरंतर लगे रहे। हरे कृष्णा। 9 बज गए, यहाँ समाप्त करते हैं। कोई त्रुटि होगी, कोई टिप्पणी होगी तो जरूर करिए आप वैष्णवगण, और कोई प्रश्न हो तो वही मेरी क्षमता उत्तर देने की तो मैं दे पाऊंगा, तो पूछिए। हरे कृष्ण। हाँ,
हरे कृष्णा। भगवान का स्वरूप समझने का एक साधारण काम नहीं है, वो नहीं हो सकता है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ प्रभु जी, कि हम लोग प्रभुपाद जी का किताबें पढ़ के हम जानते हैं कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है, और हमारा सिचुएशन ऐसा है कि हम कृष्ण भगवान का दास है ऐसा, तो भी ये हम अनुभव से हमारा स्वरूप हम नहीं जान पाते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए?
हमारा
एक्सपीरियंस से हम
अपना स्वरूप नहीं जान पाते।
अपना स्वरूप हम जान नहीं पाते हैं।
मुझे आत्मा का स्वरूप तो एक ही है ना, जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास।
हम थियोरेटिकली जानते हैं पुस्तक पढ़ के, लेकिन हमें ये खुद अनुभव होना चाहिए कि
तो यहाँ पर
जब तक हम हमारा स्वरूप हम नहीं जान सकते हैं तो हम भगवान का स्वरूप कैसे जानेंगे?
शास्त्र कहता है कि हम दास है, जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो दास का कर्तव्य क्या होता है? सेवा करना। तो हमें चैतन्य भक्ति सिद्धांत महाराज ये बोलते ना कि हम भगवान को नहीं देख सकते, तो ऐसी सेवा करो कि भगवान हमें देख ले। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं मंगल आरती में आना, हम भगवान को देखने नहीं आते। मंगल आरती इसके लिए आओ कि भगवान हमको देखे कि आप ये भक्त आया है। तो कह रहे हैं कि हम अपने को भी समझना है तो पहले भगवान की सेवा में जुड़ना है। प्रभु भक्ति सिद्धांत महाराज की स्टोरी है, तो व्यक्ति समझना चाहता था भगवान को और अपने आप को भी। ये मदन मोहन मालवीय का उदाहरण है, विश्व बनारस की विद्यापीठ के महान लेखक या प्रोफेसर थे। वो आए थे भक्ति सिद्धांत महाराज के पास कि मुझे कुछ प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूँ भगवान के बारे में और स्वयं के बारे में। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कुछ लिख रहे थे, राइटिंग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भक्ति सिद्धांत महाराज ने कि मेरे पास समय नहीं है, आप एक काम करिए, मेरा जो शिष्य है किचन में जाके सेवा कर रहा है उसके पास जाइए, वो आपको बता देगा आपके प्रश्न के उत्तर। तो उसके पास जाते हैं, तो वो शिष्य बोलता है मेरे पास तो बहुत सारी सेवा है, यदि आप मेरा हाथ बटा देंगे तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के मेरे पास समय मिल जाएगा, तो आप मेरा हाथ बटाइए। तो मदन मालवीय सोचते ठीक है भगवान की सेवा कर लेते, तो वो भी बर्तन मानने लग जाते, सेवा में जुट जाते। सेवा में जुटते 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 उनके सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलने लगते हैं, और सेवा खत्म हो जाती है तब वो शिष्य ब्रह्मचारी पूछता है आपका क्या सवाल है? बोले मेरा कोई सवाल नहीं, मेरे सवालों के प्रश्न उत्तर मुझे मिल गए। तो इस कथा में भक्ति महाराज कहते हैं कि हम स्वयं नहीं समझ सकते, इसीलिए प्रभुपाद की किताबों से यदि हम थियोरेटिकल भी समझ गए कि जीवर स्वरूप नित्य का हमको सेवा में जुड़ना है, प्रभुपाद ने बोला सेवा करो, बस हमें सेवा में लगे रहना है। सेवा करते करते भगवान अंदर से हमको हमारा स्वरूप भी समझा देंगे और स्वयं को भी प्रकट कर देंगे। तो हम बुद्धिमत्ता के स्तर पर कितना भी प्रयास करें समझने के, इसलिए जीवर स्वरूप है उसका स्वरूप क्या है? दास। दास का अर्थ है केवल सेवा करना, तो सेवा करते रहने से ही हम समझ सकते हैं। और दूसरा तरीका नहीं है। ये भक्ति दान महाराज के स्टोरी से साबित होता है कि हमारे पास दूसरा तरीका नहीं है समझने का, हमारे पास एक ही तरीका है, दास दासानु बनकर सेवा में लगे रहे। फिर हम अपने बुद्धिमत्ता लगाएंगे कि इस तरह समझेंगे उस तरह समझेंगे, नहीं। हम बद्ध जीव है ना, तो जीवात्मा बद्ध होने के कारण समझ कैसे सकता है? तो बद्धता को मुक्त होने के लिए सेवा है, और सेवा में जब तक जितना अधिक से अधिक जुड़ेंगे, और जब सेवा से भागना चाहेंगे तो नहीं समझ सकते। क्या करते, थोड़ी सी भी ज्यादा एक एक्स्ट्रा और सेवा आ जाती तो हम क्या करते, टाइम नहीं प्रभु जी मेरे पास। तो ये नहीं होता सर्वेंट, सर्वेंट मतलब 24 आवर्स एंगेज, सब हर प्रकार की, चाहे श्रवणम हो कीर्तनम हो, ये भी सेवा है, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल हियरिंग, सभी सभी सेवाओं में आती है। तो इस सेवा में हम जुड़े रहेंगे, अपने आप एक दिन आएगा जिस दिन समझ गए, है कि नहीं? नारद मुनि कैसे समझे, सेवा में जुड़े थे, जब साधु की कृपा हो गई तो समझ गए, इसलिए निकल पड़े। और हरे कृष्ण मिलके आपके प्रश्न होता उनके पास।
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत धन्यवाद सुंदर क्लास के लिए। तो मेरा जिज्ञासा ये है कि हम शास्त्रों में अनेक प्रसंगों में से हम देखते हैं कि बड़े से बड़े देवता, बड़े बड़े भक्त भी मोहित हो जाते हैं भगवान के लीला से। शिव जी भी मोहित हो गए, ब्रह्मा जी भी हो गए, इंद्र भी हो गए, माता सती भी हो गए, नारद जी भी हो गए, बहुत देखते हैं। लेकिन जब भगवान बताते हैं भगवद गीता में, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यति तत्वतः तत्वादेह पुनर्जन्म, जो हमारा सबसे बड़ा तकलीफ है संसार में, जो पुनर्जन्म वही तो बंधन है, तो उसे छूटने के लिए तत्व तो जानने के लिए बोल रहे हैं। तो ये जो सारे मोहित हो जाते हैं तो क्या वो भगवान को तत्व तो नहीं जानते हैं, भक्त नहीं है? तो अगर वो भक्त नहीं है मोहित हो जाते हैं तो फिर हम इसका थोड़ा
बड़ा अच्छा प्रश्न है, मेरे लिए चैलेंजिंग प्रश्न लग रहा है, तो शायद ये तो शिवजी स्वयं बोले यहां पर, आप जो बोल रहे हैं वो शिवजी भी बोले कि मैं स्वयं नहीं समझ सकता हूं। तो भगवान को हम तो समझ नहीं सकते बराबर, बड़े लोग तो नहीं समझते हैं, लेकिन कुछ तो अंश समझे हैं, इसलिए तो महाजन का है, इसलिए तो श्लोक आता है महाजन ये न गतासु पंथा, समय उतना बोला कि महाजन जिस रास्ते से चले उतना चलो। अभी वो समझे ना समझे, लेकिन भागवत कह रहा है कि महाजनों के रास्ते पे चलो, तो हमें बस उतना ही करना है। अभी समझना ना, क्योंकि हम बोले हम जब तक बद्ध है तब तक नहीं समझ सकते, मुक्त हो जाएंगे समझ थोड़ी बहुत समझ जाएंगे, है ना? हम भौतिक दुनिया में थे तो कुछ ना कुछ तो हमको अनुभव हुआ भगवान के बारे में, कुछ ना कुछ तो कृपा हुई, तब तो यहाँ आए, यहां भी आना साधारण बात है क्या? भगवान की भक्ति में आना, ये हरे कृष्ण संस्था से जुड़कर हरे कृष्ण चैंटिंग करना, ये भी साधारण बात? बहुनाम जन्म नामंते ज्ञान वामनाम प्रपद्यन्ते वासुदेव स्वरमिति समात्मा सुदुर्लभा, कि यहां भी आना और भगवान की भक्ति में लग जाना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो हम कुछ ना कुछ कृपा हुई तो लग गए, तो उसी तरह कुछ ना कुछ कृपा हो जाएगी भगवान की तो हम समझ जाएंगे। तो बस यही बोल रहे ना, भगवान की कृपा की राह देखनी है, इसलिए एक ही यहां पर यही बोल रहे चित्रकेतु कि भगवान की सेवा में, वो भगवान चित्रकेतु भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी सेवा मुझे, चाहे मुझे नरक में रखे स्वर्ग में रखे कहां भी रखे, लेकिन आपके सेवा में रखे, क्योंकि उनकी सेवा में रहते हुए ही हम भगवान को समझ सकते।
इस श्लोक में शिव जी बताते हैं कि ना, मैं नहीं समझ पा रहा हूं भगवान को, तो इसका मतलब भगवान की कृपा शिव जी के ऊपर नहीं हो रहे क्या?
भगवान को नहीं देखिए, भक्त कुछ होते हैं ना कि अपने आप को एकदम हमेशा क्या समझते हैं, तुच्छ है। जैसे चैतन्य चेतामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी, क्या 92 साल की उम्र है, इतने शुद्ध भक्त, लेकिन क्या बोल रहे हैं, मैं मल का कीड़ा हूं, मैं तो भगवान के ऊपर क्या लिखान कर सकता हूं, मैं तो लायक नहीं हूं। ये भक्तों की नम्रता होती है, ऐसा नहीं कि वो समझे नहीं है, समझे, इसलिए तो महाजनों के पद पर रखा है, लेकिन ये उनकी विनम्रता दर्शाती है कि ये भक्तों ने ऐसा रहना चाहिए जो इतने बड़े पोस्ट पे बैठ जाने के बाद भी क्या कह रहे हैं, भगवान मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूं। नहीं तो क्या होता है, समझ गया मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, और जहां अहंकार उत्पन्न हो जाएगा वहां भगवान विस्मरण हो जाएगा। तो भक्त क्या चाहते हैं, मैं सदैव आपको स्मरण करूं, भगवान सदैव सेवा में रहूं। जब हम भगवान के नम्र बनेंगे, इसलिए ना तुनादुपी सुनिचे ना तरोरूपी सहिष्णु ना अमानी ना माने ना कीर्तनीय सदारी, भगवान की कीर्तन में कौन सदा रहेगा जो चार क्वालिटी धारण करेगा, तो उसमें विनम्रता एक आ गई। तो शिवजी याद दर्शा रहे अपनी विनम्रता, शिवजी नहीं समझे ऐसा नहीं है, शिवजी समझे है, और जो समझ गया मतलब वो क्या धारण करेगा,
विनम्रता धारण करेगा, नहीं समझाओ क्या करेगा, मैं तो जानता हूं। जैसे दुर्योधन एक ग्वाला क्या घमंड बन गया था ना, इसलिए भगवान होते हुए भी नहीं देख सका, भगवान सामने होते भी समझ नहीं सका। तो जो ये बैड क्वालिटीज है, ये अहंकार, प्राउड, गर्व, अहंकार, दंभ, ये सब जब हम गर्वित हो जाएंगे तो भगवान को विस्मरण हो जाएंगे। इसलिए भगवान को सदैव याद करना है, भगवान की सेवा में सदैव रहना है तो विनम्रता। इसलिए जितना बोलते ना, जितना आम के वृक्ष को फल लगते उतना वृक्ष क्या होता है, उतना वृक्ष क्या होता है, झुकता है। तो जितनी अच्छी अच्छी क्वालिटी भक्तों के अंदर आते जाती है वो उतने ही विनम्र बनते जाते हैं। और विनम्रता के कारण बोलते ना, प्रभु जी आपकी विनम्रता है, आप अपने आप को महान नहीं समझ रहे। हाँ बराबर है, उसकी विनम्रता, क्योंकि महान समझ जाए तो प्राउड आ जाएगा, प्राउड आ जाएगा तो भगवान दूर हो जाएंगे। तो सबसे बड़े भक्त चतुर होते हैं, क्या होते हैं, जय बस कृष्ण से बड़ा चतुर। तो वो कभी नहीं दर्शाते कि मैं समझ गया हूं, कभी नहीं बोलेंगे कोई कि मैं भगवान को पूरी तरह समझ गया हूं, नहीं समझे। इसलिए भगवान भक्त समझ गए, ये तो मारा महाजन है, ये समझे ही तो भगवान ने तुमको बारह महाजनों के पद पे रखा है। अभी देखिए महाभारत के युद्ध के अंत में जब युधिष्ठिर राजा बोल रहे भगवान को, मैं राज्य नहीं ग्रहण करना चाहता, ऐसा रक्त रंजित राज्य नहीं, और इतने युद्ध को मार को मैं क्या करूं, तो भगवान कितना समझाने का प्रयास करते, देखो भगवान समझा रहे स्वयं। अभी सब भगवान जैसा गुरु और भगवान जैसा शिक्षक मिल जाए कौन ना समझे, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे। तो उन्होंने कहा लेके गए, कहा लेके गए, उस भगवान समझ गए, ठीक है तुम मेरे से नहीं समझ रहे, चलो 400 साल का अनुभव लिया व्यक्ति बैठा है भीष्म पितामह, चलो उसके पास। तब उसके पास लेके जाते हैं, और वहां सुनने के लिए कौन कौन आता है, सारे ब्रह्मांड से सारे ऋषि मुनि महर्षिगण, सारे नाना प्रकार के ऋषि लोग आते। तो ऐसे मतलब वो समझे नहीं थे, समझे थे, इसलिए तो महाजन, इसलिए तो भगवान उनके पास ले गए। यदि वो नहीं समझे होते तो भगवान उनके पास थोड़ी ले जाते। तो मतलब भक्त समझे हुए हैं, लेकिन वो विनम्रता के कारण अपने आप को हमेशा नम्र बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि नम्रता से ही भगवान को स्मरण हो सकता है।
तो इसका अर्थ हुआ कि शिव जी जो है वो समझे हैं और उनका विनम्रता का प्रदर्शित यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो स्वयं।
पार्वती ने क्या किया, पार्वती ने भक्ति की महिमा नहीं समझी, इसीलिए शाप दे दिया। यदि पार्वती भी शिव जी की तरफ समझ जाती है तो शाप देती, क्योंकि एक वैष्णव किसी को शाप नहीं देता है सहसा। तभी
भगवत गीता में भगवान अनेक स्थानों में बताया है कि मुझे कोई नहीं समझ सकता है, तो भक्त्यामाम अभिजानाति का अर्थ क्या है, पूरा तरह उनको जान लेना।
भक्त्यामाम भक्ति से जाना जा सकता है, केवल भक्ति एक मार्ग, भगवान बोल दिया मुझे जाना जा सकता है, भगवान अन्य जगह बोलते मुझे नहीं जाना जा सकता, लेकिन भगवान भी बोल रहे मुझे जाना जा सकता है। मतलब भगवान यही कहना चाहते गीता में कि भक्ति में लगे रहो, भक्ति छोड़ो, ये उनके लिए कह रहे हैं कि जो नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवत गीता में चारों योगों का वर्णन है ना, ज्ञान योग, जिसमें ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी के लिए भगवान वो कह रहे हैं कि मुझे ज्ञान से नहीं जाना जा सकता है, तो भगवान यहां कह रहे कि भक्ति से जाना जा सकता है। 18वां अध्याय तो कंक्लूजन है ना भगवत गीता का, तो उसमें कंक्लूजन यही बता रहे कि मुझे जाना जा सकता है लेकिन केवल भक्ति से। और भक्ति का डेफिनेशन क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम पूर्वक की गई सेवा, दिस इज भक्ति। तो अल्टीमेट आता कहां पर है, हम विनम्रता से भगवान की सेवा में लगे रहे, वो समझाना चाहे तो समझेंगे, नहीं तो बाकी सारे 12 महाजन क्या कर रहे हैं, सेवा में लगे ना, मुक्त हो जाने के बाद भी हम बद्ध अवस्था में सेवा नहीं करते, सेवा में जी चुराते। अरे वो मुक्त हो जाने के बाद 24 आवर देखो सेवा में लगे हैं। शिव जी क्या कर रहे हैं, 24 घंटा नाम जप कर रहे हैं, सबसे बड़ी सेवा है। नारद जी क्या कर रहे हैं, ट्रैवलिंग टीचर है, 24 घंटा घूम रहे हैं टीचिंग करते हुए। तो 24 आवर सेवा में एंगेज होने का भाव हमारे अंदर आ जाए तो हम समझ जाएंगे, लेकिन हम अभी नहीं समझ रहे, क्यों, क्योंकि हम बद्ध है, भगवान की सेवा का मूल्य नहीं समझते हैं, इसलिए हम नहीं समझ सकते, इसलिए हमारे अंदर ये आ रहा कि हम नहीं समझ सकते। हम समझ जाएंगे जब हम उनके कहे के अनुसार सेवा करो, 24 आवर्स एंगेज रहो कृष्ण सेवा में, तब हम समझ पाएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदी।